खबरों से भरे न्यूज 18 हिंदी के पॉडकास्ट में मैं अनुराग अन्वेषी आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों। साथियों, यह राहत भरी खबर है कि देश में कोरोना की लहर कमजोर पड़ी है, पर अभी भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है। इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने देश के जिलों में लॉकडाउन से छूट देने के लिए कुछ नीतियां तय की हैं। आज के पॉडकास्ट में हम केंद्र की नीतियों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। इसके अलावा वैक्सीनेशन के मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से क्या कहा, यह भी बताएंगे आपको। 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर किए गए फैसलों से भी रूबरू करवाएंगे आपको। इन खबरों के अलावा आपको बताएंगे कि क्यों नौकरी पेशा लोगों के पीएफ खाते में अधिक राशि आएगी। पश्चिम बंगाल और केंद्र के बीच जारी तनातनी की खबरें भी होंगी आज के पॉडकास्ट में। साथ ही मौसम का हाल भी बताएंगे हम आपको। फिलहाल पहली खबर अनलॉक की नीतियों को लेकर। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कमजोर होने और आशंकित तीसरी लहर के बीच केंद्र सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया के बारे में अहम नीतियां तय की हैं। दरअसल कई राज्यों ने लागू लॉकडाउन में आज से कई छूट देने का फैसला किया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि उन्हीं जिलों में छूट मिलनी चाहिए जहां कम से कम एक हफ्ते तक पॉजिटिविटी रेट 5% से कम रही हो और कुल आबादी के करीब 70% लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका हो। इसके साथ ही कोविड प्रोटोकॉल्स का भी सख्ती से पालन किया जाए। जो जिले इन पैमानों पर खरे उतरते हैं वहां अधिकतर पाबंदियों से छूट दी जाए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के महानिदेशक और भारत के कोविड 19 टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर बलराम भार्गव ने मंगलवार को इस बात पर जोर दिया कि प्रतिबंधों से धीरे धीरे छूट दिए जाने से मामलों में तेजी नहीं आएगी। जिलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि टीकाकरण को प्राथमिकता दी जाए। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ढलान पर है, लेकिन ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। वहीं कोरोना की वैक्सीन की शॉर्टेज भी बनी हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों और इलाज से जुड़ी दवाओं की कमी पर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट दायर की थी, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कई सवाल खड़े किए। हाईकोर्ट ने कहा, हमें दुख होता है कि हमने कितने युवाओं को इस बार खो दिया। आप ऐसों की ज़िंदगी बचाने में लगे हैं जो अपनी ज़िंदगी जी चुके। हम नहीं कह रहे कि आप सीनियर सिटीजन्स को प्राथमिकता मत दीजिए, लेकिन अगर वैक्सीन की कमी है तो कम से कम प्राथमिकताएँ तो तय करें। बुजुर्ग देश को नहीं चलाने वाले। दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच के जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमित सिंह ने वैक्सीन और दवाओं पर केंद्र सरकार की स्टेटस रिपोर्ट को अस्पष्ट और सरकार को प्राथमिकता तय करने में नाकाम बताया। कोर्ट ने केंद्र को उसकी मौजूदा नीतियों को लेकर फटकार लगाते हुए कहा, युवाओं को प्राथमिकता दीजिए, इन्हीं पर देश का भविष्य निर्भर करता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने 10वीं के बाद अब 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं भी रद्द कर दी हैं। CBSE की इस घोषणा के कुछ ही घंटों बाद काउंसिल फॉर द इंडियन सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी CISCE ने भी अपनी 12वीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा करते हुए CISCE के अध्यक्ष डॉक्टर जी इमानुअल ने कहा कि परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, हालांकि परिणाम संकलित करने का आखिरी फैसला लिया जाना अभी बाकी है। CISCE इससे पहले 10वीं की परीक्षाएं भी रद्द कर चुका है। इससे पहले CBSE बोर्ड ने 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया था। CBSE 12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला PM मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार शाम हुई बैठक में किया गया। PM मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 12वीं का रिजल्ट एक उपयुक्त व उचित क्राइटेरिया के आधार पर समयबद्ध तरीके से जारी किया जाए। बैठक में PM ने साफ तौर पर कहा कि ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में छात्रों को परीक्षा में बैठने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। हमारे छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का अत्यधिक महत्व है और इस पहलू पर कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच विवाद तब और गहरा गया जब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य के पूर्व मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को आपदा प्रबंधन अधिनियम के कड़े प्रावधान के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया। गौरतलब है कि इस मामले में दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की कैद हो सकती है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा सोमवार को बंदोपाध्याय की सेवानिवृत्ति की घोषणा किए जाने के कुछ घंटे पहले उन्हें आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-20 के तहत नोटिस भेजा गया। मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि बंदोपाध्याय से 3 दिन के अंदर नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल काडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी अल्पन बंदोपाध्याय 60 वर्ष के होने पर सोमवार को सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन केंद्र ने उन्हें 3 महीने का कार्य विस्तार दिया था। इसके बाद केंद्र ने एक आकस्मिक फैसले में 28 मई को बंदोपाध्याय की सेवाएं मांगी थीं और राज्य सरकार को प्रदेश के शीर्ष नौकरशाह को तत्काल कार्यमुक्त करने को कहा था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले पर सोमवार को प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और बंदोपाध्याय को सेवानिवृत्त होने की अनुमति देने के बाद उन्हें 3 साल के लिए अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया। बंदोपाध्याय को 3 दिन में गृह मंत्रालय को लिखित में यह बताने के लिए कहा गया कि उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही क्यों न की जाए। ये खबरें आप News18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे हैं। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट hindi.news18.com पर जाएं। नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अगले महीने PF खाते में ज़्यादा पैसे आ सकते हैं। दरअसल एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी EPFO की तरफ से कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 8.5% ब्याज जुलाई अंत तक देने की घोषणा जल्द हो सकती है। इस मामले में EPFO को श्रम मंत्रालय की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। इस प्रक्रिया को जल्दी ही शुरू करने की संभावना जताई जा रही है। इससे PF के दायरे में आने वाले देश भर के करीब 6 करोड़ कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। EPFO की तरफ से फिस्कल ईयर 2020-21 के लिए 8.5% ब्याज जुलाई के आखिरी तक दिया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्याज का पैसा कर्मचारियों के अकाउंट में सीधे क्रेडिट किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप केस की जांच कर रही SIT आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले पर पेन ड्राइव लेने के लिए जाएगी। इससे पहले SIT ने कमलनाथ को इस बारे में नोटिस के जरिए सूचना दी थी कि 2 जून को SIT की टीम पेन ड्राइव लेने और बयान दर्ज करने के लिए बंगले पर पहुंचेगी। दरअसल कमलनाथ ने हनी ट्रैप से जुड़ी पेन ड्राइव सबके और खुद के पास होने की बात कही थी। इस बयान के बाद अब SIT सक्रिय हो गई है। इस बयान को SIT ने अपनी जांच में शामिल कर लिया है। इसे आगे बढ़ाने के लिए जिस पेन ड्राइव का जिक्र कमलनाथ ने किया था उसे अपने कब्जे में लेकर SIT आगे की जांच करेगी। इसके लिए ही 2 दिन पहले कमलनाथ को नोटिस भेजकर तय समय पर बंगले पर उपस्थित रहने के लिए SIT ने कहा था। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण देने का फैसला किया है। राज्य सरकार की तरफ से जारी नए आदेश के मुताबिक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी EWS में मराठा समुदाय शामिल हो गया है। इसके बाद कम्युनिटी में शामिल लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण मिलेगा। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने मुंबई में यह आदेश जारी किया है। नए आदेश के तहत मराठा समुदाय के सदस्य EWS आरक्षण के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10% के अंदर लाभ उठा सकेंगे। इसके तहत EWS कोटा की शर्तों को पूरा करने वाला व्यक्ति जो किसी अन्य आरक्षण वर्ग में शामिल नहीं है उसे रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। देश के कई शहरों में पिछले 2 दिनों से तेज हवा चलने के साथ बारिश हो रही है। इससे मौसम खुशनुमा बना हुआ है। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने दिल्ली NCR के अलावा राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कुछ राज्यों के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। IMD के अनुसार तटीय क्षेत्रों में भी इस दौरान तेज हवा चलेगी। इसको लेकर मछुआरों को भी अलर्ट किया गया है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली में बुधवार को बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके अगले 2 दिन भी बादल छाए रहने और गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 2 जून को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, कोंकण, गोवा, मराठावाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायल सीमा, कर्नाटक, असम, मेघालय, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप, केरल और माहे में बारिश की संभावना जताई है। ये खबरें आप News18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे थे। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट hindi.news18.com पर जाएं। News18 के पॉडकास्ट में आज इतना ही। नई खबरों और नए अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुराग अन्वेषी को दें विदा। नमस्कार दोस्तों।